प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, हो यीशु नाम प्यारा नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। जब तेरी शरण में आया, तुझको मन से है अपनाया। मैं जब तेरी शरण में आया, तुझको मन से है अपनाया। तू ही बचाए मेरे प्राण, बचाए मेरे प्राण। यीशु नाम भजल तू मन रे, उसका सुमिरन तू कर ले रे। यीशु नाम भजल तू मन रे, उसका सुमिरन तू कर ले। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। राजा हो या हो वो भिखारी, पापी हो या हो वो पुजारी, राजा हो या हो वो भिखारी, पापी हो या हो वो पुजारी, माफी का देता है वो दान, माफी का देता है वो दान। परशुराम भजले तुमर रे, उसका सुमेरन तो कर ले रे। यशुराम भजले तुमर रे, उसका सुमेरन तो कर ले। यशु नाम प्यारा नाम, यशु नाम प्यारा नाम, ओ यशु नाम, यशु नाम प्यारा नाम, ओ यशु नाम, यशु नाम प्यारा नाम। सुमिरन कर मन यशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, 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 हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं। आज मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस इस पत्री के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण बातों को बताया है। सर्वप्रथम हमने देखा कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे और उसी प्रकार पति भी पत्नी को प्रेम दे। इस प्रकार से हमने पाया कि कलीसिया का संदर्भ देते हुए उसने हमें प्रेम करने की आज्ञा दी और इसके साथ हमने देखा कि माता पिता को बच्चों को रिस ना दिलाने की बातें कही गई है ताकि हम बच्चों की देखभाल उचित रीति से कर सकें, उन्हें परमेश्वर के डर और भय में बढ़ाने पाएं। कई बार हम माता पिता इस बात से चूक जाते हैं और यही कारण होता है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। पौलुस इस पत्र के द्वारा इन सारी बातों को हमें स्मरण दिलाता है। इसके बाद वह हमें बताता है कि एक विश्वासी को, चाहे वह दास हो चाहे वह स्वामी हो, एक भाई और बहन के समान रहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक समानांतर में चलना है, एक दूसरे को आदर देना है। और तब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मसीह एक योद्धा है और हमें बताया गया है कि मसीह एक योद्धा है और उसे इस संसार में रहते हुए अपने आत्मिक जीवन में बलवंत होना है, क्योंकि हमें इस संसार में रहते हुए संसार के उन अंधकार के हाकिमों से युद्ध करना है, अर्थात ये हमारा युद्ध स्थान है। पौलुस हमें बताता है कि हमारा मल युद्ध किसी लहू और मांस से नहीं परंतु संसार के उन अंधकार के शक्तियों से है जो शैतान की सेना है। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके माध्यम से प्रभु आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। हम धन्यवादित हैं इफिसियों की पत्री के लिए जिसके माध्यम से आज तक आपने हमें नई नई बातों को सिखाया है। आपने हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि आप हमारे जीवन में भली बातों को उत्पन्न करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि प्रत्येक विश्वासी आप में बलवंत किया जाए। प्यारे परमेश्वर, आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं सीख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं, बेरोजगार हैं, अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं। पिताजी, आप उनकी सहायता करें। इस घड़ी फिर से एक बार हम सबको आप अपने आशीष प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मसीही योद्धा के वैरी और आत्मिक युद्ध की चर्चा करते हुए अब पौलुस उन हथियारों का उल्लेख करने जा रहा है जो इस आत्मिक युद्ध में मसीही योद्धाओं को काम में लेना आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं कि एक सिपाही की सुरक्षा क्या है। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 13 पद में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ध्यान दीजिए, वैरी को तो हमने देख लिया है, अब पौलुस हथियारों के नाम बताएगा। विश्वासी से कहीं भी नहीं कहा गया है कि वह वैरी पर आक्रमण करे या युद्ध में आगे बढ़े। यहां पर मुख्य वाक्यांश है स्थिर रह सको। बाइबल विश्वासियों को तीर्थयात्री कहती है। हमें इस संसार में तीर्थयात्री की नाई ही रहना है। बाइबल के अनुसार हम गवाह हैं और हमें दुनिया की छोर तक जाना है, धावकों की नाई दौड़ना है और अपनी आंखें प्रभु यीशु पर गड़ाए रखना है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बाइबल हमें योद्धा कहती है और स्थिर रहने को भी कहती है। स्पष्ट कहूं तो मैं पुराने तरीके की स्थिरता को अपनाऊंगा, न कि युद्ध करने को। मेरे मित्रों, वर्षों पूर्व एक प्रचारक था जिसका नाम विली संडे था। वह कहता था कि वह प्रचार मंच पर शैतान से लड़ता था और उसकी यह बात सुनकर बहुत लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। मेरे विचार में उसकी बात में सच्चाई थी, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में हैं और जहां भी परमेश्वर का वचन और सुसमाचार का प्रचार होता है वहां युद्ध होता ही है। आज भी यही युद्ध देखा जा सकता है। बैरी वही काम करता है। बैरी शनिवार रात्रि को काम नहीं करता है। वर्षों पूर्व जब मैं युवावस्था में था और परमेश्वर की सेवा में सक्रिय था, हम प्रत्येक शनिवार रात्रि के समय प्रचार करते थे, क्योंकि हमारा कहना था कि शनिवार रात्रि शैतान की रात होती है और हम इसे प्रभु की रात बना रहे हैं। अब क्योंकि मैंने अनेक वर्षों से परिस्थितियों को देखा है, इसलिए मैं सोचता हूं कि शनिवार रात शैतान घर में बिस्तर पर आराम करता है कि अगली सुबह वह आराधना में आ सके। उसे अपने ही लोगों से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? जी हाँ, वे तो उसी के हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि वह उन पर गर्व करता है। सच तो यह है कि वह इन शराबियों और आवाराओं से लज्जित है। वह उन पर घमंड नहीं कर सकता। वह तो वहां रहना चाहता है जहां आत्मिक युद्ध चल रहा है। जहां तक मेरा अपना प्रश्न है, मुझे कभी यह बोध नहीं हुआ कि मुझे यह युद्ध लड़ना है, अर्थात मुझे आक्रमण नहीं करना है। हमें आज्ञा दी गई है कि हम स्थिर रहें। आक्रमण करना शैतान का काम है, हमें तो आज्ञा है सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। मैं तो पराजित विश्वासियों द्वारा यह गाना सुनकर उत्साहित नहीं होता हूं कि यीशु के सिपाही आगे कदम मार। मेरे विचार में यह गीत अधिक धर्मशास्त्र आधारित है। क्रूस के सिपाही यीशु के लिए खड़ा हो। बुरे दिनों में विश्वासी का स्थिर रहना ही विश्वासी की विजय है। मेरे प्रियो, आज अनेक कलीसियाओं को देखकर मेरा मन दुखी होता है। मैं स्थानीय कलीसिया और स्थानीय पास्टर से प्रेम रखता हूँ। युद्ध में व्यस्त अनेक अद्भुत पास्टर भी हैं। यही वे लोग हैं जो आज युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं। मैं अनेक बाइबल सभाओं में वक्ता के रूप में होकर के जाता हूँ, क्योंकि मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। मैं अनेक वर्षों से सेवा कर रहा हूं कि कह सकूं कि जब कोई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है तो कितना अच्छा लगता है, और मैं वास्तव में इसे सराहता हूं। कलीसिया की उपस्थिति को कम देखकर और महान कलीसियाओं में रुचि की कमी देखकर मेरा मन दुखित हो जाता है। कलीसिया के सदस्य इस तथ्य के प्रति अंधे हो गए हैं कि वहां एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। मेरे मित्रों, क्या आप अपने पास्टर के लिए शनिवार की रात प्रार्थना करते हैं? उसकी आलोचना करने की अपेक्षा उसके लिए आप प्रार्थना करें। उसे आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। शैतान उसका बहुत विरोध करता है। आपको उन लोगों का साथी नहीं होना है जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले को क्रूस पर चढ़ाएं। आपको उसका साथ देना है जैसे हारून और हूर इसराइल की ओर से मूसा का साथ देते थे। मेरा मन उन पासवानों के लिए तड़पता है जिन्हें ऐसी कलीसियाओं की आवश्यकता है जो उसके साथ खड़ी हो सके। जी हाँ, कई पास्टर आज भी अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि कलीसिया के लोग उसके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं, अर्थात खड़े नहीं होते हैं, सहयोग नहीं देते हैं। आज आप उस ओर हैं जो आपका बैरी है। इफिसियों के पत्र 6:14-15 में आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। ध्यान दे, स्थिर रहो। यह चौथी बार है कि वह विश्वासियों को ऐसा आदेश देता है। यह पहली बार है कि मैं पौलुस को एक सेनानायक के समान आदेश देते हुए देख रहा हूँ। पहले तो उसने कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, परंतु अब वह स्थिर रहने का आदेश देता है। अब हमें स्थिर तो रहना ही है, परंतु हमें अपने सुरक्षा के लिए कवच भी धारण करना है। हमें शैतान की युक्तियों से हारना नहीं है, हमें उसके आक्रमण के लिए तैयार रहना है। मेरे प्रियो, सत्य से कमर कसकर, उस युग की वर्दी में कमरबंद वर्दी के अन्य सब भाग को संभाले रहता था, वह बहुत आवश्यक था। और सच तो यह है कि यदि कमरबंद खो गया तो आपका सब कुछ खो गया। आपका वस्त्र हवा में उड़ने लगेगा और आपकी पतलून नीचे गिर जाएगी। हम व्यंग कला में भी ऐसा ही देखते हैं कि एक पुरुष भाग रहा है या लड़ रहा है और उसकी पतलून नीचे सरक रही है। लोग यह देखकर हंसते हैं, परंतु यह हास्य कला तक ही अच्छा है, युद्ध में नहीं। कहा जाता है कि प्राचीन युग में एक चतुर सेनापति अपने सैनिकों से कहता था कि बैरी जब सो रहा हो तब उसका कमरबंद काट दें। सुबह बैरी अपने पतलून संभालने में इतना व्यस्त होगा कि बंदूक नहीं चला पाएगा और युद्ध में हार जाएगा। हमें आदेश दिया जा रहा है कि हम बैरी के समक्ष अपनी कमर कस लें। सत्य सब बातों को संयोजित करता है। यह सत्य क्या है? यह परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर के वचन के प्रचारकों की आवश्यकता है, परंतु ज्यों का त्यों। आज अनेक जन अपनी गवाहियां देते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी, सिनेमा सितारे, टीवी कलाकार आदि सब अपनी गवाहियां देते हैं। उनमें से अधिकांश तो घास चर रही बकरी से अधिक बाइबल का ज्ञान नहीं रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन को अधिक नहीं जानते हैं। हम ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी कमर सत्य के कमरबंद से कसी हो। उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। मेरे मित्रों, मैं आपको दर्जनों ऐसे प्रचारकों के नाम बता सकता हूं जो अनेक पंथों के विचारों में पड़ जाते हैं। मैं यह मानता हूं कि ये गवाहियां सुनने में अति रोमांचक होती है, परंतु वे उन लोगों की गवाहियां हैं जो वहां खड़े होकर अपना आत्मिक कवच गिराने वाले हैं। वे सत्य अर्थात परमेश्वर के वचन से कमर कसे हुए नहीं है। किसी भी समय वे पराजित हो सकते हैं। इस कवच का प्रत्येक भाग मसीह का प्रतीक है। हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह में उपस्थित हैं, परंतु यहाँ हमारे सांसारिक आचरण में हमें मसीह को धारण करना है। पौलुस हमसे कह चुका है कि हमें मसीह को धारण करना है, क्योंकि वही तो सत्य है और हमें अपने जीवन में उसे धारण करना है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे मित्रों, वह गवाही जो प्रभु यीशु का महिमान्वन न करे उसे सुनाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश गवाहियां आत्म प्रशंसा की होती है, जैसे मैं एक महान खिलाड़ी था या मैं बहुत बड़ा कलाकार था, परंतु अब मैं अपनी प्रतिभा प्रभु यीशु के अधीन करता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि यीशु की किस्मत अच्छी है कि मैं विश्वासियों की भीड़ में हूँ। मेरे मित्रों, यदि आपके पास यीशु है तो आप ही किस्मत वाले हैं। आपको और मुझे पाकर तो प्रभु यीशु को कुछ नहीं मिला, परंतु इस समय इस अंकिंचन प्राणी के पास कहने के लिए अधिक कुछ नहीं है। हमारे मन में यह विचार है कि हमें संसार की दृष्टि में महान होना है। नहीं, हमें तो सत्य से कमर कस कर आगे बढ़ना है, अर्थात कमर कसना है, जिससे कि हम प्रभु यीशु को या उसके महिमान्वन को आगे बढ़ा सकें, यीशु के महिमान्वन के निमित्त गवाही दे पाएं। प्रभु यीशु सत्य है, केवल सत्य ही चूक का सामना कर सकता है। धार्मिकता की झीलम पहनकर विश्वासियों की धार्मिकता प्रभु यीशु है। मेरे विचार में वह हमारी व्यवहारिक धार्मिकता है। यहां हमें स्पष्ट होना है कि हमारी धार्मिक मैले चित्रों के समान है। कहने का मतलब है कि हमारी धार्मिकता मैले चित्रों के समान है और वे झीलम के काम की नहीं, परंतु मैं यह मानता हूं कि मन और विवेक का परमेश्वर के उचित संबंध में होना आवश्यक है। केवल मसीह की धार्मिकता विश्वासी को मनुष्य और परमेश्वर के समक्ष खड़ा होने योग्य बनाती है, परंतु मन जिसकी रक्षा करना है वह विश्वासी को दोषी न ठहराएगा। जी हाँ, आत्मिक युद्ध लड़ते समय जीवन में पाप होना अत्यधिक भयानक अवस्था है। ऐसे में हम कभी विजयी नहीं होंगे। हम आगे पढ़ते हैं, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। स्थिरता के लिए जूतों की आवश्यकता होती है, वे आधार का काम करते हैं। हमें अच्छी और ठोस नींव की आवश्यकता है और तैयारी भी मुख्य बात है। मुझे स्मरण है कि कुश्ती में हमारे पाँव को अत्यधिक दृढ़ रहना होता है। क्या आपके पाँव चट्टान पर दृढ़ता से जमे हुए हैं? इस संसार में मसीह यीशु आपकी नींव आधार है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु के अतिरिक्त मनुष्य कोई नींव नहीं डाल सकता है। हमें प्रभु यीशु को धारण करना है। ओह, आज हमें सत्य से इनकार करने वाले इस संसार में जिसमें आत्मिक दुष्टता अंधकार व्याप्त है, प्रभु यीशु की कैसी आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज हम इस गंभीरता को समझ लें कि बिना प्रभु यीशु के हम अपना मसीही जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन मुझे और आपको इस संसार में रहते हुए उस शैतान से सामना करना है, और इसीलिए प्रभु अपने विश्वासियों से कहता है, अपने दास पौलुस के द्वारा से, कि हम अपने आप को तैयार कर लें, सुसमाचार के मेल को पहन लें, अपने कमरबंद को कस लें, ताकि हम उसका सामना कर सकें। आज हम में से कितने लोग इस तरीके से तैयार पाए जाते हैं? क्या आज हम उस अंधकार की शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं, तो आज हम अपने जीवन को प्रभु के निकटता में लाएं, उससे कहें, प्रभु मुझे वो हथियार बांधने में मदद करें, ताकि मैं आपके लिए स्थिर रह सकूं, मैं विजयी जीवन जी सकूं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी बहुत गंभीरता से इस विषय पर सोचना है। हमें अपने उन पासवानों के लिए, प्रचारकों के लिए प्रार्थना करनी है ताकि वे अपने जीवन में विजयी हो सकें। आज कलीसिया में शांति और एकता के लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर पाई जाए और हमारा बैरी किसी रीति से सफल न होने पाए। आइए आज हम अपने कलीसियाओं के लिए, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन को भी प्रभु के हाथ में सौंपें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए। पिताजी, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी हर एक कलीसियाओं के लिए जो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, विशेष करके उन क्षेत्रों में जहां पर शैतान की शक्तियों का बोलबाला है। पिताजी, विनती करते हैं कि वहां के पासवानों को आप अपने सामर्थ्य से, वचन से, पवित्र आत्मा से भरपूरी प्रदान करें, प्रत्येक विश्वासी को दृढ़ करें, वचन के सुसमाचार के मेल के जूते लगाकर, कमर बंद लगाकर ये सामना के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु, आप उन्हें स्थिर करें ताकि एक एक जीवन आप में दृढ़ होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे कलीसियाओं को जिसे आपने स्थापित किया है उसके द्वारा आपको आदर मिल सके, प्रत्येक में प्रेम, दया और अनुग्रह बहने पाए। इस घड़ी हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप उनके जीवन में भी अपनी आशीष प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज आपने अवश्य ही अपने जीवन में बहुत गंभीर और विशेष बात को सीखा है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जीवन को अपना ले जिसने।